लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन आचरण द्वारा सुसमाचार का साक्ष्य प्रस्तुत करे तथा प्रभु ख्रीस्त के प्रेम संदेश को जन जन में फैलाने के मिशन के प्रति वचनबद्ध रहे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, दुनिया में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। विश्व में इस बीमारी से 21 अक्टूबर को 4,61,374 नए मामले दर्ज किए गए और 7,204 मौतें दर्ज की गईं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि वैसे तो कोविड महामारी से होने वाले मृत्यु दर में कमी आ रही है, परंतु वैक्सीन के टीकाकरण में अब भी विषमता बरकरार है। उन्होंने विकासशील देशों से ज्यादा सहायता और समर्थन की अपील की। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने महामारी फैलाव की वजह बनने वाले नए रोगाणुओं के मूल स्रोतों की पड़ताल करने के लिए बुधवार 13 अक्टूबर को एक नए विशेषज्ञ समूह के प्रस्तावित सदस्यों की घोषणा की है। इस समूह में 26 वैज्ञानिक अनेक देशों से हैं और एक वैश्विक आह्वान के बाद प्राप्त 700 आवेदनों में से उनका चयन किया गया है। इन विशेषज्ञों के चयन के दौरान भौगोलिक व लैंगिक विविधता का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा कि गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि महामारी के कारण अति आवश्यक सेवाओं में आए व्यवधान के प्रति उपजी उन आशंकाओं की पुष्टि करती है जिसमें टीबी के विरुद्ध प्रगति में असर होने का भय व्यक्त किया गया है। रिपोर्ट दर्शाती है कि वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में ज्यादा लोगों की मौतें हुई और अपेक्षाकृत कम लोगों में इस बीमारी का पता चल पाया है। इसके अलावा कम मरीजों का इलाज या रोकथाम के लिए उपचार हुआ है और टीबी के लिए अति आवश्यक सेवाओं में कुल व्यय में भी गिरावट आई है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली मौतों की संख्या इस समय लगभग एक साल के दौरान सबसे कम स्तर पर है। UN स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस।
But it's still an unacceptably high level, almost 50,000 deaths a week.
महानिदेशक गेब्रियसिस कह रहे थे कि ये संख्या कम है लेकिन अब भी अस्वीकार्य स्तर तक बहुत ज्यादा है। दुनिया भर में हर सप्ताह लगभग 50,000 लोगों की मौतें हो रही हैं, जबकि वास्तविक संख्या निश्चित रूप से इससे कहीं ज्यादा होगी। UN एजेंसी के महानिदेशक ने कहा कि स्वाभाविक रूप से ऐसे देशों में संक्रमण और मौतों के मामले सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं जहां बहुत कम आबादी को वैक्सीन मिल पाई है। इस बीच स्वास्थ्य संगठन ने महामारी फैलाव के लिए जिम्मेदार वायरसों के मूल स्रोत की पड़ताल के लिए एक नए विशेषज्ञ समूह की घोषणा की है। इस समूह में शामिल 26 वैज्ञानिक महामारी फैलाव की आशंका वाले वायरस के मूल स्रोत के अध्ययन के लिए एक वैश्विक फ्रेमवर्क विकसित करने पर परामर्श देंगे। इसी सप्ताह जारी एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में आए व्यवधान से टीबी के खिलाफ लड़ाई में वर्षों से हो रही प्रगति को एक बड़ा झटका लगा है। एक दशक से ज्यादा समय में पहली बार टीबी से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है।
चीन की राजधानी बीजिंग में गुरुवार को टिकाऊ परिवहन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र का दूसरा सम्मेलन शुरू हुआ है जिसमें जलवायु कार्यवाही, आर्थिक प्रगति और टिकाऊ विकास में परिवहन तंत्रों के योगदान पर चर्चा हो रही है। टिकाऊ विकास के 2030 एजेंडा और पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के प्राप्ति के नजरिए से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 से कुछ दिन पहले आयोजित इस बैठकों में सरकारों के प्रतिनिधि, उद्योग जगत के विशेषज्ञ और नागर समाज संगठन हिस्सा ले रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट यानी टिकाऊ परिवहन के मुद्दे पर चीन की राजधानी बीजिंग में संयुक्त राष्ट्र का दूसरा सम्मेलन हुआ है, जिसमें जलवायु कार्रवाई, आर्थिक प्रगति और टिकाऊ विकास में परिवहन तंत्रों के योगदान पर चर्चा हुई है। यूएन प्रमुख अंतोनियो गुटेरेश ने इस सम्मेलन को अपने संबोधन में कहा,
द डोर इज क्लोजिंग फॉर एक्शन ऑन क्लाइमेट, नेचर एंड पोल्यूशन। वी मस्ट एक्ट टुगेदर स्मार्टली एंड क्विकली टू मेक द नेक्स्ट 9 ईयर्स काउंट।
यूएन महासचिव कह रहे थे कि जलवायु, प्रकृति और प्रदूषण पर कार्रवाई का दरवाजा बंद हो रहा है। हमें अगले 9 वर्षों की अवधि सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एकजुटता के साथ अक्लमंदी और तेजी से काम करना होगा। यूएन प्रमुख अंतोनियो गुटेरेश के शब्द। विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार टिकाऊ परिवहन के जरिए वर्ष 2050 तक $70,000 अरब तक की बचत हो सकती है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया भर में अगर लोग ज्यादा सक्रिय रहें और व्यायाम करें तो हर साल लगभग 50 लाख लोगों की मौत को टाला जा सकता है, मगर बहुत से लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं और बसते हैं जहां ऐसे स्थान या तो बहुत कम हैं या बिल्कुल ही नहीं, जहां वे सुरक्षित तरीके से टहल सकें, दौड़ सकें, साइकिल चला सकें या अन्य शारीरिक गतिविधियों में सक्रिय रह सकें। रिपोर्ट के अनुसार यहां ऐसे अवसर मौजूद भी हैं या तो वृद्ध व विकलांगताओं वाले लोगों की वहां तक पहुंच नहीं है। इन हालात में बेहतरी लाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शारीरिक गतिविधियों और व्यायाम के लिए ज्यादा बेहतर और सभी के लिए आसान व सुलभ मौके मुहैया कराए जाने की पुकार लगाई है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रतिष्ठा जैन।
WHO ने इन हालात में बेहतरी लाने के लिए शारीरिक गतिविधियों और व्यायाम के लिए ज्यादा बेहतर और सभी के लिए आसान व सुलभ अवसर मुहैया कराए जाने की पुकार लगाई है। UN स्वास्थ्य एजेंसी ने अपनी एक नई रिपोर्ट में स्वास्थ्य, खेलकूद, शिक्षा और परिवहन सेक्टरों में निर्णय करने वाली हस्तियों से व्यायाम व अन्य स्वास्थ्य लाभ वाली गतिविधियों व अवसरों को और ज्यादा बढ़ावा देने का आह्वान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से मालूम होता है हर 4 में एक यानी लगभग 25% वयस्क और हर 5 में से 4 किशोरजन इस समय पर्याप्त शारीरिक गतिविधियों या व्यायाम में हिस्सा नहीं लेते हैं। उच्च आय वाले देशों में निष्क्रिय और आलसी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कि लगभग 37% है।
भारत में यूनेस्को ने वर्तमान स्थिति में शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर देश की शिक्षा की स्थिति पर वर्ष 2021 की रिपोर्ट जारी की है। शिक्षकों के बिना कक्षा संभव नहीं नामक यह रिपोर्ट शिक्षकों, शिक्षण और शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
यूनेस्को के नई दिल्ली कार्यालय ने भारत में शिक्षकों पर शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2021 यानी स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट तैयार की है। नई दिल्ली में यूनेस्को कार्यालय के प्रमुख एरिक फॉल्ट कहते हैं,
India's new national education policy recognizes...
भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षकों को सीखने की प्रक्रिया के केंद्र के रूप में मान्यता देती है। इसलिए हमारी 2021 की रिपोर्ट शिक्षण को समर्पित है, क्योंकि शिक्षकों के बिना कोई कक्षा नहीं हो सकती है और कोई उचित शिक्षा नहीं हो सकती है।
नई दिल्ली में यूनेस्को कार्यालय के प्रमुख एरिक फॉल्ट के शब्द। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों, अल्पसंख्यक बहुल जिलों और भारत के पूर्वोत्तर इलाकों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां शिक्षकों और छात्रों के अनुपात में सुधार की जरूरत है। इस रिपोर्ट की मुख्य लेखक पद्मा एम सरंगपाणी ने कहा,
शिक्षक विकास को उन विविध संदर्भों में ढालना चाहिए जिनमें वो काम करते हैं, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों और वंचित समूहों के साथ काम करने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण और कौशल में।
ICT साक्षरता शिक्षकों के लिए प्रमुख दक्षताओं में से एक के रूप में उभरी है, विशेष रूप से COVID-19 महामारी के मद्देनजर।
और इसी के साथ हम लोकोपकारी चर्चा को यहीं विराम देते हैं आज के सभी विषय यूएन हिंदी समाचार से लिए गए थे। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
तू है दया का सागर पिता, भर दे मुझ में प्यार तेरा।
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने कॉन्स्टेंटिनोपल के एकतावर्धक प्राधिधर्माध्यक्ष और महाधर्माध्यक्ष बार्थोलोम की नियुक्ति की 30वीं वर्षगांठ पर बधाइयां अर्पित करते हुए प्राधिधर्माध्यक्ष के नाम शुक्रवार को एक पत्र प्रेषित किया। जो है और जो था और जो आने वाला है, उसकी ओर से आपको अनुग्रह और शांति। बाइबल के प्रकाशना ग्रंथ के इन शब्दों से संत पापा फ्रांसिस ने अपना बधाई संदेश आरंभ कर कहा कि प्राधिधर्माध्यक्ष बार्थोलोम की नियुक्ति की 30वीं वर्षगांठ पर वे उनके प्रति हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। संत पापा ने लिखा, मैं विगत वर्षों में आपके जीवन और मिशन को प्रदान की गई कई आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने में आपका साथ देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर, जो सभी वरदानों का स्रोत हैं, आपको अच्छा स्वास्थ्य, आध्यात्मिक आनंद और प्रचुर अनुग्रह प्रदान करें, ताकि आप अपने नेक सेवा कार्य के हर पहलू को बनाए रखें। संत पापा ने प्राधिधर्माध्यक्ष के साथ उनके अपने घनिष्ठ संबंध पर चिंतन किया तथा कहा कि इन्हीं संबंधों की वजह से उनके और प्राधिधर्माध्यक्ष बार्थोलोम के बीच रोम में ही नहीं अपितु फन्नार, जेरूसलम, असीसी, मिस्र के काहिरा, लेस्बोस और बारी तथा बुदापेस्ट में मुलाकातें संभव हुई हैं। वर्तमान कालीन विश्वव्यापी संकट के मद्देनजर संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि संपूर्ण मानव जाति के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कैथोलिक कलीसिया और कुस्तुंतुनिया की कलीसिया की सामान्य प्रेरितिक जिम्मेदारी है तथा जिसके निर्वाह के लिए आपसी सहयोग अति अनिवार्य है। पत्र में संत पापा फ्रांसिस ने प्राधिधर्माध्यक्ष बार्थोलोम से कहा, विशेष रूप से मैं आपको सृष्टि की सुरक्षा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और इस मुद्दे पर आपके चिंतन के लिए आपकी सराहना करता हूं। उन्होंने लिखा, महामारी के प्रकोप और आने वाले गंभीर स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक नतीजों के साथ मानवता के आध्यात्मिक रूपांतरण की आवश्यकता पर आपके साक्ष्य और शिक्षण ने स्थायी प्रासंगिकता हासिल कर ली है। इसके अतिरिक्त संत पापा फ्रांसिस ने लिखा, मैं आपको निष्ठापूर्वक यीशु मसीह के अनुयायियों के बीच मेल मिलाप और पूर्ण एकता की स्थापना हेतु संवाद, उदारता और सच्चाई का रास्ता इंगित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। ईश्वर की मदद से हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सार्वभौमिक भ्रातृत्व और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए दोनों कलीसियाओं के बीच सामीप्य और एकात्मता अपरिहार्य है। परम धर्म पीठ हेतु स्लोवाक गणराज्य के राजदूतावास ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि स्लोवाक गणतंत्र की राष्ट्रपति सुजाना कापुतोवा ने गुरुवार को संत पापा फ्रांसिस को मानवतावादी उपहार भेजा है। स्लोवाक गणराज्य की विज्ञप्ति में कहा गया कि संत पापा फ्रांसिस को उनकी हाल में संपन्न स्लोवाक गणराज्य की प्रेरितिक यात्रा के दौरान उक्त उपहार स्लोवाक गणराज्य की राष्ट्रपति सुजाना कापुतोवा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन स्वरूप अर्पित किया गया था, जिसे 21 अक्टूबर को वैटिकन पहुंचा दिया गया है। मानवतावादी उपहार में विभिन्न चिकित्सा सामग्री शामिल है, जैसे एक वेंटिलेटर, 1,00,000 से अधिक 3-लेयर मास्क, विभिन्न प्रकार के कीटाणुनाशक और कीटाणुनाशक लैंप, जिनका उपयोग कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए किया जा सकता है। स्लोवाक गणराज्य की इस भेंट का इस्तेमाल निर्धनों, सबसे कमजोर और बीमार लोगों की मदद हेतु परम धर्म पीठीय संरक्षण में आयोजित स्वास्थ्य और सामाजिक सहायता सुविधाओं में किया जाएगा। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने राष्ट्रपति सुजाना कापुतोवा की इस परोपकारी भावना और सर्वाधिक कमजोर एवं हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के प्रति स्लोवाकिया के इस नेक कृत्य की सराहना की। संत पापा फ्रांसिस ने एक ट्वीट संदेश में ख्रिस्तीय प्रार्थना के महत्व को प्रकाशित किया है। गुरुवार 21 अक्टूबर को प्रकाशित एक ट्वीट संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने लिखा, ख्रिस्तीय प्रार्थना मानव हृदय में एक अजेय आशा को उत्पन्न कर देती है, जिससे जो भी अनुभव हमारे हृदय का स्पर्श करता है, ईश्वर का प्रेम उसे भलाई और भले कार्यों में परिणित कर सकता है। वैटिकन ने एक अधिसूचना जारी कर गुरुवार को घोषणा की कि रोम के टाइबर द्वीप पर स्थित सान जुवानी कालीबीता फाते बेने फ्रतेली अस्पताल द्वारा विगत कुछ समय से अनुभव किए जा रहे आर्थिक और प्रबंधकीय समस्याओं के मद्देनजर वैटिकन ने उक्त संकट के समाधान के लिए एक पुनर्गठन योजना शुरू की है। परम धर्म पीठीय बुलेटिन के अनुसार उक्त योजना का उद्देश्य संरचना को कैथोलिक स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा के संदर्भ में अब तक निभाई गई भूमिका को आगे भी जारी रखना है। वैटिकन की अधिसूचना में कहा गया कि फाते बेने फ्रतेली अस्पताल की मदद का फैसला विगत 11 जुलाई को रोम के जमेली पॉलीक्लिनिक अस्पताल से की गई देवदूत प्रार्थना के अवसर पर उच्चरित संत पापा फ्रांसिस के शब्दों को सुनने के बाद लिया गया था, जहां संत पापा स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ दिन अस्पताल में थे। इस अवसर पर संत पापा ने स्वास्थ्य सेवा में कलीसिया के मिशन कार्य को रेखांकित किया था। भारत के धार्मिक और राजनैतिक नेताओं ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामेश्वर शर्मा द्वारा ईसाइयों और मुसलमानों से दूर रहने हेतु किए गए आह्वान की कड़ी निंदा की है। भोपाल में हाल में मनाए गए दशहरा महापर्व के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भाजपा नेता रामेश्वर शर्मा ने हिंदू धर्मानुयायियों का आह्वान किया था कि वे अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा की रक्षा हेतु ईसाइयों और मुसलमानों से दूर रहें। शर्मा ने कहा था कि फादर और चद्दर से वे दूर रहें जो उन्हें बिगाड़ सकते थे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हिंदुओं को सूफी मंदिरों और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू मंदिरों के रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। सांसद शर्मा के भाषण का एक वीडियो 17 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसकी विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने आलोचना करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी से यह स्पष्ट करने की मांग की थी कि क्या वह सांसद शर्मा की सार्वजनिक घोषणा के साथ सहमत है जो लोगों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर विभाजित करती है। शर्मा के आह्वान पर प्रतिक्रिया दर्शाते हुए भोपाल के महाधर्माध्यक्ष लियो कोर्नेलियो ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सांसद एक सार्वजनिक मंच से ईसाई और मुसलमानों का बहिष्कार करने के लिए लोगों का आह्वान कर उनमें विभाजन उत्पन्न कर रहा था। ऊका न्यूज से महाधर्माधीश कोर्नेलियो ने कहा कि इस प्रकार की असंवेदनशील भावनाएं शांतिप्रिय लोगों को ठेस पहुंचाती हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के वक्तव्य स्पष्ट दर्शाते हैं कि सांसद का मकसद लोगों का ध्यान असली समस्याओं जैसे आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, बेरोजगारी, अशिक्षा, बीमारी, बढ़ता कुपोषण और भुखमरी आदि से दूर हटाना था। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।